आशिका इस वक्त सिडनी एयरपोर्ट पर थी। उसे वहां से इंडिया की फ्लाइट लेनी थी ताकि वो स्काई के गुंडों से सुरक्षित बचकर जा सके। आशिका इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसका पीछा किया जा रहा था। इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ होने में टाइम था तो आशिका एयरपोर्ट के वेटिंग में थी। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई लेकिन अचानक उस पर वहां हमला हो गया था। दो गुंडों ने आशिका को गन पॉइंट पर लेकर बेहोश कर दिया था। उन्हें स्काई की तरफ से ही ऑर्डर मिले थे कि अगर आशिका वहां से भागने या उसे धोखा देने की कोशिश करे तो वो उसे किडनैप करके उसके तक पहुंचा दे। आशिका बेहोशी की हालत में एक गुंडे के कंधे पर थी। उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो बहुत आसान निकला, चलो अब इसे बॉस के पास पहुंचा देते हैं। वैसे मैंने उन्हें अब तक बताया नहीं था, ये लड़की धोखा देकर भागने की प्लानिंग में थी। कोई बात नहीं, उन्हें भी सरप्राइज मिलेगा, दूसरा आदमी बोला और उसने आशिका के चेहरे की तरफ देखा। वो उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। आशिका दिखने में खूबसूरत थी। उसने कुछ पल सोचा और कहा, ये लड़की वैसे भी उन्हें धोखा देकर भागने वाली थी, क्यों ना हम इसे ले जाएं? हमें बस मैसेज करके यही बोलना है, लड़की एयरपोर्ट से सीधे होटल गई थी, आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर उन्हें इस बारे में जरा भी भनक हो गई तो परिवार के आखिरी सदस्य तक को खत्म कर देंगे। नहीं भी मारा तो जिंदगी मौत से बदतर कर देगा वो आदमी, और तुम उसे धोखा देने का सोच रहे हो, पहले आदमी ने उसे डांटते हुए कहा। वो स्काई के लिए काफी समय से काम कर रहा था तो अच्छे से जानता था कि उसको धोखा देने वाले का वो क्या हाल करता था। दूसरे गुंडे ने सिर झटका और कहा, तुम बेवजह खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। मैंने कहा ना, बस एक मैसेज छोड़ देंगे, आगे सारा मामला लड़की के ऊपर आने वाला है या फिर उन आदमियों पर जो होटल पहुंचने के बाद इसकी निगरानी करने वाले थे। गौर से देखो इस लड़की की तरफ, जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की को हाथ भी लगाया है? हम बस इसे यहाँ से ले जाएंगे और अपने मन की पूरी करने के बाद इसे कुछ महीनों बाद मार देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। ना तो मैं ये बेवकूफ़ी खुद करूंगा और ना ही तुम्हें करने दूंगा। बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना इसे यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हारी जान ले लूंगा, पहले गुंडे ने दूसरे को धमकाते हुए कहा। उसने आशिका को वहीं जमीन पर लेटाया और फिर दूसरे गुंडे से निपटने के लिए बढ़ा ही था कि तभी अचानक से एक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आई। बहुत शौक चढ़ा है तुम लोगों को लड़कियों को किडनैप करके अपने मन की पूरी करने का, चलो आज मैं बताती हूँ कि हम लड़कियों के मन में क्या चलता है तुम जैसे आदमियों को देखकर, वो गुस्से में बोली। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इशिका थी, जो अपने किसी काम के चलते सिडनी आई हुई थी। इशिका काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रही थी। जब बचपन में उसने सिंघानिया मैंशन छोड़ा था तब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इशिका में हर एक मार्शल आर्ट सीखी थी, जिसका अच्छा खासा डेमो उसने राजवंश मिलकर गार्ड्स को दिया था। उसने अकेले ने मिलकर काफी सारे गार्ड्स को सबक सिखा दिया था, जबकि यहाँ तो सिर्फ दो गुंडे थे। इशिका तेजी से आगे बढ़ी और उसने पहले गुंडे का गला पकड़ लिया था। दूसरे ने उस पर वार करने की कोशिश की लेकिन इशिका ने घूमते हुए अपने पैर से उसे किक मारी। शर्म नहीं आती इस तरह किसी मासूम लड़की को ले जाते हुए? तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां सुरक्षित होकर अकेले बाहर नहीं घूम सकती, इशिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उनसे लड़ते हुए अचानक एक गुंडे ने इशिका को धक्का दिया और वो पेट के बल वहां लगे सिंक से जा टकराई थी। इशिका प्रेग्नेंट थी, हालांकि धक्का जोर से नहीं लगा लेकिन फिर भी उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रख लिया था। पिछली बार उसने अपने बच्चों को खो दिया था तो अब वो अपनी प्रेगनेंसी में किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। ऊपर से वो अभिमन्यु को समझा बुझाकर बहुत मुश्किल से अपने काम के चलते अकेले सिडनी आई थी। ऐसे में उसे या बच्चे को कुछ होता तो अभिमन्यु सच में उससे नाराज हो जाता। गुस्से में इशिका की आंखें लाल हो गई थी। वो जल्दी से दूसरी तरफ पलटी। जिसने उसे धक्का दिया था इशिका ने भागते हुए उसके पेट पर किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया था। फिर इशिका ने उसके बालों को पकड़ा और उसका सिर फर्श पर दे मारा था। हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, इशिका गुस्से में बोली। अगर उस चोट से उसके बच्चे को कुछ हो जाता वो ये सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में इशिका ने उन पर काबू पा लिया था और फिर पुलिस को बुलाकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया था। आशिका का चेहरा जमीन की तरफ था तो इशिका ने उसका चेहरा नहीं देखा। जब मामला शांत हुआ तब इशिका ने आशिका का चेहरा ऊपर किया। आशिका को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई थी। आशिका, ये इस हाल में क्या कर रही है? लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब आशिका ने यही कहा था कि उसका भी कोई अननोन हस्बैंड है, तो क्या ये उसे ढूंढते हुए यहाँ सिडनी आई है? इशिका हैरानी से बोली। आशिका ने अब तक उसे स्काई के बारे में कुछ नहीं बताया था। इशिका उसे इमरजेंसी रूम में लेकर गई। जब आशिका को होश आया था तब वो भी इशिका को अपने सामने देखकर चौंक गई थी। वो सिडनी आई थी, इस बारे में आशिका ने उसे कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर मर्चेंट, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आशिका ने धीमी आवाज में पूछा। वो उठकर बैठने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। लेटी रहो, उन्होंने तुम्हें बेहोश करने के लिए स्ट्रांग इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। अगले 24 घंटे तक तुम अपनी बॉडी को ठीक से संभाल नहीं पाओगी, इशिका ने उसे समझाया और वापस लेटा दिया था। कुछ पल रुकने के बाद इशिका ने सख्त आवाज में पूछा, आशिका आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओगी? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम जब भी किसी प्रॉब्लम में होगी तो मुझसे हेल्प लेने के लिए आओगी। मैंने अकेले बहुत कुछ झेला है आशिका, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी अकेले अपनी तकलीफें सहनी पड़े। आशिका की नजरें झुक गई थी। वो इशिका को परेशान नहीं करना चाहती थी।
इशिका उसकी दुविधा को समझ सकती थी। उसने आशिका का हाथ सहलाकर कहा, मैंने उस दिन भी तुम्हें यही कहा था और आज भी यही कहूंगी कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाएगा। अब बताओ क्या हुआ है? बात सिर्फ इतनी नहीं हो सकती कि अचानक तुम्हें एक अननोन हस्बैंड मिल गया। आशिका ने गहरी सांस ली और उस दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ इशिका को बता दिया था। कैसे तृप्ति ने उसे बुलाकर उसकी शादी एक बूढ़े माफिया के साथ करवाने की कोशिश की और अब वो चाहते हैं कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि इस गाय आशिका से शादी कर सके। पूरी बात सुनने के बाद इशिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो बोली, वो औरत पागल तो नहीं हो गई है? हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। और तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरे साथ इंडिया चल रही हो। मैं और अभिमन्यु मिलकर इस मामले को देख लेंगे। वैसे मैं इंडिया ही जा रही थी। उन लोगों को मैंने झूठ बोला कि मैं अपने पति के पास ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे आ जाएंगे और इस तरह मुझे किडनैप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी लाइफ खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ इशिका, मैं खुद देख लूंगी। और वैसे भी मुझे मुंबई में एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इस सिलसिले में मुंबई जा रही थी। कुछ दिन यहाँ रुकूंगी और फिर मुंबई चली जाऊंगी तो किसी को शक नहीं होगा। आशिका ने अपने आगे का प्लान इशिका को बता दिया था।
बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हारे पीछे सिर्फ ये दो लोग पड़े हुए थे? मैंने उनकी बातें सुनी थी। यहाँ से तुम होटल जाओगी तो तुम्हें और आदमी तैयार मिलेंगे जो टाइम तुम्हारा पीछा करेंगे। यही सही वक्त है जब हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से मुंबई तक कैसे लेकर जाना है, इशिका ने सख्त आवाज में कहा। तो आशिका के पास भी मना करने का कोई रास्ता नहीं था। आशिका को सब समझाने के बाद इशिका दूसरी तरफ गई और उसने तुरंत अभिमन्यु को कॉल किया। तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए था, दिशांग से मेरी बात हुई थी। तुमने लेट क्यों किया? वहां सब ठीक है ना इशिका? अभिमन्यु ने परेशान स्वर में पूछा। इशिका वहां अभिमन्यु के प्राइवेट जेट में आई थी और अब तक उसे गोवा के लिए निकल जाना चाहिए था। उसके टाइम से ना आने की वजह से वो थोड़ा परेशान हो गया था। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु मेरे साथ में ऐश भी है और इस वक्त सच में उसकी लाइफ खतरे में है। मैं उसे मुंबई लेकर आना चाहती हूँ। क्या कोई सेफ जगह मिल सकती है जहाँ हम उसे रख सकते हैं? मेरा मुंबई में कोई जान पहचान वाला नहीं है और ना ही मैंने कभी वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, इशिका ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसे अभिमन्यु से फेवर लेते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो इस तरह की डिमांड कर रही थी। रिलैक्स, मैं उसके रहने के लिए अपना एक अपार्टमेंट तैयार करवा दूंगा, तो उसे ले आओ। और उसकी जान को खतरा है तो मैं गार्ड्स को बोल दूंगा कि वो तुम लोगों की सेफ्टी के लिए थोड़ा अवेयर रहें, अभिमन्यु ने जवाब दिया। आशिका ने भी मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी तो वो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। इशिका ने राहत की सांस ली। वो बोली, ठीक है फिर, आशिका को मुंबई छोड़ने के बाद मैं गोवा आ जाऊंगी। मिलते हैं अभिमन्यु। इशिका कॉल कट करने को हुई तभी अभिमन्यु बोला, रुको, तुम्हें गोवा आने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ महीने के लिए मुंबई आ रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट भी हैं और साथ में अभिमान से भी बात करनी है। मैं तुम्हारी पैकिंग कर लूंगा और हम वहाँ राजवंश मेंशन में रहने वाले हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। कॉल कट हो जाने के बाद इशिका आशिका के पास आई और उसे पूरी बात बताई। एक बार फिर इशिका आशिका की मदद कर रही थी। आपने मुझे अपनी छोटी बहन का मान लिया तो सच में मैं आप पर बोझ बन गई, आशिका ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बताना। बाकी मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम किसी प्रोजेक्ट या काम के चलते मुंबई जा रही हो तो खुद ही हैंडल कर लोगी, इशिका उसे अपनी तरफ से कंफर्टेबल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आशिका को मुंबई सुरक्षित पहुँचाने की प्रॉब्लम को इशिका ने चुटकियों में हल कर दिया था। अभिमन्यु ने पहले ही इशिका की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारे गार्ड्स भेजे थे। अब उनके साथ इशिका केयरफुली आशिका को मुंबई लेकर जा रही थी। तो वहीं मुंबई में आशी ने अपना पूरा दिन स्पा के अंदर बिताया था। शाम को वहां से फ्री होने के बाद वो वापस अभिमान के पास जा रही थी। जब वो बिलिंग काउंटर के पास पहुंची तो अचानक किसी से टकरा गई और उसका बैग नीचे गिर गया था। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं तुम जैसे लोगों को यहाँ एंट्री कौन दे देता है, आशी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। उससे जो लड़की टकराई थी वो काफी सिंपल सी लग रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उस जैसी महंगी जगह पर आने के लिए उसने काफी महीनों तक अपनी पॉकेट मनी बचाई होगी। वो लड़की नीचे झुककर आशी का सामान उठाने को हुई तो आशी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया था। आशी खुद ही झुककर अपना सारा सामान उठाने लगी तभी लड़की की नज़र उसके सामान के ऊपर गई तो वो हैरानी से बड़बड़ाकर बोली, अजीब बात है, दो आईडी लेकर कौन घूमता है? ऊपर से दिखने में दोनों ही ओरिजिनल लग रही हैं। आशी ने उसकी तरफ घूर कर देखा क्योंकि वो उसके सामान को देख रही थी। आशी ने जल्दी से अपनी दोनों आईडी को बैग के अंदर रख दिया था। हाँ, उसके पास दो आईडी थी, दोनों पर ही आशिका सिंघानिया नाम लिखा हुआ था। दोनों आईडी पर फोटो और नाम तो एक ही थी लेकिन नंबर अलग थे। एक ओरिजिनल आशिका सिंघानिया की आईडी थी तो दूसरी किसकी थी इस बारे में खुद आशी भी नहीं जानती थी और ना ही उसने कभी पता लगाने की कोशिश की। बस हाँ, वो आईडी उसे अभिमान को ब्लैकमेल करने के काम आती थी, वरना वो खुद जानती थी कि वो आशिका सिंघानिया नहीं है जिसकी शादी अभिमान से हुई थी।